ओम शांति। बाबा की यादों में सभी ऐसे समाये हुए थे, इतने बड़े संगठन में जरा भी कोई हलचल नहीं, जैसे एक बाबा के प्यार में सब खो गए हों। मुझे बाबा की एक बात याद आई, साकार में जब बाबा विशेष योग कराते थे तो घड़ी में जो टिक 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 होती है, कहते थे बच्चे ये बच्ची आवाज करती है, इसको बंद कर दो। वो स्थिति क्या होगी योग की, संकल्प की भी हलचल समाप्त हो जाए। कितनी एकाग्रता है उसमें, कितनी स्थिरता है, और कैसे बाबा की एक टिक याद है, कोई संकल्पों की हलचल नहीं। ऐसा अनुभव कर रहे थे ना, ये विशेष योग, इंटरनेशनल योग जो होते हैं, सारे विश्व के अंदर इतनी पवित्र आत्माएं, इतनी ब्राह्मण आत्माएं एक ही संकल्प में स्थित होकर के बाबा के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, तो बाबा की सब शक्तियां चारों ओर फैलने लगती हैं। बहुत सुंदर अनुभव हो रहे थे, साथ साथ बाबा की आज की मुरली भी विशेष सम्मान याद आ रहा था। नया टाइटल आज बाबा ने दिया, कौन सा, तुम बच्चे अल्लाह अव्वल दीन के चिराग हो। पहली बार सुना होगा अल्लाह अव्वल दीन, जो बाबा हमारा अव्वल राजधानी, नई दुनिया की स्थापना कराता है, ऐसे अल्लाह के सतयुगी दुनिया के हम सब चिराग हैं। तो बाबा अपने चिराग बच्चों से क्या चाहता है कि एक एक बच्चे की दृष्टि से मुक्ति और जीवन मुक्ति, घर और राज्य का साक्षात्कार होने लगे। तो हम सब जब इस स्मृति में रहते हैं कि हम बाबा के चुने हुए बच्चे उस अल्लाह के बगीचे के चमकते हुए सितारे हैं या एक बत्ती, कहते अल्लाह के बगीचे की, अल्लाह के बहिष्ट की बत्ती हैं, चिराग हैं। उस चिराग के आगे भी कहते हैं जो अल्लाह का चिराग था, कोई भी कामना लेकर के जाता था, कोई संकल्प लेता था, वो पूरा हो जाता था। तो हम सभी भी ऐसी स्थिति में रहें, हमारी कामनाएं होंगी तो कैसे उनकी पूरी करेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति हो कि सब कामनाएं बाबा आपने पूरी कर दी, कोई कामना नहीं रही, तो हमारे से कई आत्माओं को जो कुछ चाहिए, कोई मुक्ति के प्यासी हैं, कोई जीवन मुक्ति के, कोई सुख चाहते हैं, कोई शांति चाहते हैं, वो सब प्राप्तियां अपने आप होने लगेंगी। तो बाबा अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, किस नजर से देखते हैं। आज तो मधुबन निवासी बाबा के सामने थे, मुझे वो घड़ी याद है जब मधुबन के मेडिटेशन हॉल में हम बहुत थोड़े बाबा के बच्चे 79 में बाबा के सामने थे, और बाबा हम सबको कितना प्यार से, कितनी शिक्षाओं से सजा रहे थे। आज के समय में वो सब शिक्षाएं हमारे जीवन में हैं। चेक किया, मुरली सुनते ऐसे लगा कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, मुझे खुद को देखना है, खुद को बदलना है, दूसरे को बदलने की आस नहीं रखनी है। कभी ये संकल्प भी नहीं करना ऐसा ये क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें भी बाबा ने कहा कि बच्चे ये भी जैसे आग में तेल डाल देते हो, आग भड़क जाएगी। कोई कुछ भी करता है, मैं कहां तक राइट कर रहा हूं, दूसरा भले फुल रांग कर रहा है, हमें पता भी है कि रांग हो रहा है, लेकिन बाबा की क्या आस है, क्या चाहना है। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाबा ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि ये अपने लिए भी है या दूसरों के लिए ही है। तो हम सभी ने आज की मुरली सुनते मनन चिंतन किया होगा। मैं तो आज क्लास में कह रहा था, रामानुसार मुझे भी पीस पार्क में आज की मुरली सुनाने का अवसर मिला था। मैंने कहा ऐसे सुनने से सारी मुरली समझ में नहीं आएगी, कम से कम इसको 5 बार पढ़ो, मुरली लेकर के बार बार रिवाइज करो, कितनी गहरी शिक्षाएं हैं। क्या बाबा एकदम पूरा हमारा होमवर्क पूरा चार्ट दिया है, कोई चार्ट बनाने की जरूरत नहीं। अमृत वेले का कौन सा संकल्प होना चाहिए, मुरली क्लास के समय कौन सा संकल्प होना चाहिए, कर्मणा सेवा के समय क्या संकल्प रखना है, फिर भोजन के समय क्या संकल्प रखना है, सैर के समय क्या संकल्प रखना है, नमाज शाम के योग के समय संकल्प, और रात्रि में क्या करना। पूरा अमृत वेले से रात्रि तक के लिए बाबा ने मुरली के अंदर विशेष प्रेरणाएं दी हैं कि हर एक को प्रोग्राम दिया जाएगा, चार्ट बना के दिया जाएगा, तो थोड़ा मेहनत है, करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हर एक अपने आप अपना प्रोग्राम बनाए, और ग्रुप में अगर बनाएगा तो एक करेगा तो 10-1 से। बाबा ने आज बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, सिंधी में कहते हैं 10-12, एक के साथ 2 लग जाते हैं तो 12 हो जाते हैं, 2 लग गए एक के साथ तो 12 हो जाएंगे, अगर एक करेगा और एक को देख के और 2 करेंगे तो 12 का ग्रुप बन जाएगा। तो इसलिए हम सब बाबा के बच्चे बाबा की इन आशाओं को पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे, कृत संकल्प, दृढ़ संकल्प करेंगे कि बाबा जो आप चाहते हो, जैसा आप बनाना चाहते हो, ऐसा हम बन करके दिखाएंगे। कोई कुछ भी कह रहा हो, बड़े अच्छे शब्द बाबा के थे, कहीं टक्कर हो रही है, कहीं कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, ग्लानी कर रहा है, अगर उसने 10 किया और आपने 1 कर दिया तो क्या होला बोला, वो भी आपने कमल फूल तो नहीं रहे ना, छीटा तो पड़ गया। इसलिए उस समय साक्षी हो जाओ, सुनते भी नहीं सुनो, देखते भी नहीं देखो, बहुत ऊंची स्थिति है, उसके लिए नम्रता का कवच चाहिए। अगर जरा भी नम्रता में कमी होगी, कोई कुछ भी बोल देगा तो फौरन गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, अब शब्द निकल जाएंगे, बदला लेने की भावना आ जाएगी। लेकिन जो नम्रता का अवतार बन करके रहते हैं, जो अभी गीत सुन रहे थे, ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, बाबा जैसा हम सब निरहंकारी बन जाएं, जरा भी अहंकार का अंश न रहे, देह अभिमान ही अहंकार का दूसरा रूप है, अगर जरा भी अहंकार होगा तो अपमान सहन नहीं हो सकता, कोई कुछ भी बोलेगा तुरंत 1 का 10 जवाब दे देंगे। और बाबा अपने बच्चों को इतना मजबूत करना चाहता है निर्विघ्न बनाने के लिए तीन बातों को अंडरलाइन करना होता है। एक तो हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है, जो भी जिस स्थान पर संगठन है, चाहे 10 का संगठन है, 5 का संगठन है, 3-4 का भी है, हर आत्मा विशेष आत्मा है। और जब एक दूसरे की विशेषताओं को हम देखने लगते हैं, देखना ही सिर्फ नहीं है लेकिन एक दूसरे के पीठ पीछे उन विशेषताओं का वर्णन भी करना चाहिए, ये आत्मा इतनी महान है, ये विशेष है। और उस नजर से अगर हमारी भावनाएं बनती हैं और दूसरे तक हम कोई वर्णन कर देते हैं, उस तक वो बात पहुंचती है, तो उसको कितनी खुशी होती होगी कि बहुत ऊंची नजर से मुझे लोग देखते हैं। तो विशेषताएं देखने का एक बहुत अच्छा अभ्यास हो, है सब में। कोई ऐसा है बाबा का लाल जिसको जो कहे कि मेरे अंदर तो एक भी विशेषता नहीं है? है कैसा कोई बैठा यहाँ? सब विशेष आत्माएं हैं, चुनी हुई आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, जिनके ऊपर डायरेक्ट भगवान की नजर पड़ी वो आत्माएं हैं। हम उनकी नजर से पल रहे हैं, वरदानों से पल रहे हैं, बाबा की छतरी के छत्र छाया के नीचे रह रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है, कितनी विशेष आत्माएं हैं जिनको बाबा ने चुन करके अपने गुलदस्ते में मर्ज कर लिया है। तो ऐसी विशेषता देखने का अगर अभ्यास हम संगठन में कर लें, हैं सब में लेकिन दिखाई दें प्रैक्टिकल, तो मैं समझता हूं कभी उनकी कमियों का वर्णन हम नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा महसूस नहीं करेगा कि इसकी नजर मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरे लिए गलत सोचता है, इसकी भावनाएं मेरे प्रति गलत हैं। और दूसरी बात है, संगठन के बीच में अगर एक रूहानियत का वातावरण बन जाए, जैसे नियत के अंदर रूह देखने का अभ्यास हो जाए, आत्मा को ही देखें, आत्मा देख के बात करें, प्रैक्टिस हो जाए, तो रूहानियत का वातावरण व्यक्त और व्यर्थ भाव को समाप्त कर देगा। क्योंकि विघ्नों का मूल कारण होता है व्यक्त और व्यर्थ, बाह्य मुक्ता। जिस स्थान पर बाह्य मुक्ता का वातावरण रहता है, जिस सेंटर पर अधिक संसार समाचार के लेन देन होती है, आते हैं क्लास करने, मुरली सुनने, योग करने, लेकिन अगर वहां पर कोई लौकिकता का वातावरण बनता है, आपस में मुरली के क्लास के बाद में बैठ करके 10 लोग पर चर्चा करते हैं, 5 लोग भी ऐसी चर्चा करते हैं, तो उस स्थान का वातावरण जो मुरली से क्लास से चार्ज होता है, वो उस समय डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि विघ्नों के आने का दूसरा कारण है हमारी संगठन की बाह्य मुक्ता। इसलिए अंतर्मुक्ता का अभ्यास और रूहानियत का किला मजबूत हो, जो साथी साथ रहते हैं लक्ष्य रखें कि हमें सदा रूहानियत में रहना है, अंतर्मुखी होकर रहना है, बाह्य मुक्ता में नहीं आना है। और तीसरी बात आज बाबा ने अंडरलाइन कराई, संस्कार तो कभी एक जैसे होंगे नहीं, संस्कारों में भिन्नता सदा ही रहेगी, मुझे उन भिन्नता को मिटाना है, उस भिन्नता को मिटा के एकता को कायम करना है। तो जिस स्थान पर ये तीनों बातों का ध्यान रहता है, भिन्नता को मिटाना है, एकता में आना है, भले कैसे भी संस्कार हों, मिला करके चलना है, एडजस्ट होने की नेचर बना लेनी है, तो भिन्नता जब मिट जाएगी, कोई को अंदर प्रवेश करने की, अपनी मत को अंदर डालने की शक्ति नहीं रहेगी। लोग ढूंढते हैं कहाँ इनकी संस्कारों की टक्कर है, और उस संस्कारों की जरा भी टक्कर जब दिखाई देती है तो अपनी बात को वहां एडिशन कर देते हैं, किसी न किसी के रूप, किसी न किसी रूप से उस आत्मा के ऊपर प्रभाव डाल देते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि संगठन के बीच में कोई भी बातें होती भी हैं, आपस में थोड़ी बहुत जहाँ चार भाई बहने रहते हैं वहां कुछ होता भी है तो भी कोई बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, उसको इतना समाये, उसको इतना समाप्त करें जैसे एकदम कोई बात हुई ही नहीं है। तो आज की ऐसी मुरली बाबा के पारिवारिक पालना थी, एक जैसे परिवार में बच्चों को बाबा क्या ट्रेनिंग देते हैं, इस मुरली को अगर हर परिवार वाला अपने परिवार के साथ लागू कर ले, उसके घर के हर विघ्न खत्म हो जाएंगे, हर समस्या समाप्त हो जाएगी। निमित्त मात्र तो बाबा किसी को ट्रेनिंग देते ही हैं, शिक्षा देते ही हैं। तो आज बाबा के सामने हम थोड़े से बच्चे थे, लेकिन बाबा तो बेहद में ले जाना चाहते हैं, बाबा की दृष्टि बेहद की, उनकी भावनाएं बेहद की नजर से सबको देखता है। तो हम सबको भी बाबा कहते हैं, बच्चे बेहद में आ जाओ, हदों में नहीं फंसो। तो नम्रता का कवच पहनने वाली आत्मा की क्या निशानियां होंगी, या नम्रता किस रूप से धारण की जा सकती है? क्योंकि जब तक हम अपने आप को सेवा के फील्ड में निमित्त नहीं समझते, निमित्त भाव नहीं है, तब तक नम्रता नहीं आ सकती। और निमित्त भाव का अर्थ है बाबा करावनहार है, मैं केवल निमित्त मात्र करा रहा है। सारी सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य कितने गुप्त रीति से किन किन बच्चों की तपस्या और त्याग के बल से करा रहा है वो हम सब देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। दिखाई देने वाली आत्माएं थोड़ी हैं, दिखाई देने वाली आत्माएं तो कई बार मान शान महिमा की भूखी होती हैं कि मैंने किया है तो कोई को पता तो चले, मैं करता हूं तो 10 लोगों को सुनाता हूं। लेकिन ऐसे गुप्त बाबा के बच्चे हैं जो यज्ञ के पिल्लर्स हैं। सुना होगा आपने एक बार हमारे देश के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो जहां भी फोटो निकलने लगती थी तो वहां से वो हट जाते थे। तो लोग पूछते थे, साहब ऐसा क्यों करते हो? बोलते थे, जो सच्चे सेवक होते हैं वो फोटो के भूखे नहीं होते। उन्होंने बड़ा अच्छा मिसाल एक बार दिया था कि आप सब फोटो लेते हो किसका, लाल किले का, उसकी सुंदरता का, उसकी डिजाइन का, लेकिन ये जो जिस आधार से खड़ा हुआ है, जो इसके नीचे न्यू है, आप उसका कभी फोटो लिया है? अगर वो न्यू हिल जाए थोड़ी भी तो ये ताजमहल क्या होगा। तो जो इस यज्ञ की न्यू है, जो बहुत गुप्त पुरुषार्थी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, गुप्त रीति से बाबा के यज्ञ को तन से मन से धन से हर प्रकार से भरपूर कर रहे हैं, ऐसे बहुत से गुप्त रतन हैं जो कभी सामने आना ही नहीं चाहते, स्टेज पर भी नहीं आना चाहते। ऐसे बच्चों की बाबा कितनी दिल से महिमा करता, कितनी दुआएं देता होगा, कितने सरल सहज योगी निरहंकारी नम्र चित, जिनको कोई मान शान महिमा की भूख नहीं है। तो जो नम्रचित आत्माएं हैं वो निमित्त मात्र, अपने आप को बाबा आपने करा लिया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे महिमा नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, कोई आगे बढ़ाए, सीट दे, बिठाए, नहीं तो क्या होता, थोड़ा सा भी कोई कर लेता है यज्ञ में, अच्छा सहयोग देता है तो चाहता है कम से कम मुझे सीट तो आगे मिल जाए, बाबा के सामने तो मैं बैठूं। पहले स्टेज पर जाने के लिए तड़पते थे, अभी सामने बैठने के लिए तड़पते हैं। लेकिन जो बहुत गुप्त रीति रहते हैं, मैं देखता हूं, कहते हैं बाहर बैठ के भी बहुत अच्छी भाषणा ले रहे हैं, बाबा हमारे पास यहाँ आ गया, पीछे 8 नंबर 10 नंबर गेट पर बैठे हुए भी कितने अच्छे अच्छे अनुभव बाबा के कर लेते, बाबा कैसे उन तक पहुंचता है, सकाश देता है, शक्ति देता है, कहते मुझे ही बाबा देख रहा था, बॉम्बे में बैठी हुई दादी वहां से बाबा दृष्टि दे रहा है। एक बहन मेरे को कहती मैं तो पीछे बैठी थी, बाबा ने मुझे दृष्टि दी। कितना सुंदर निश्चय होगा उसका, कितनी भावना होगी कि बाबा ने मुझे वहां से दृष्टि दी, मुझे अनुभव हो गया बाबा मेरे साथ आ गया। सच्चे दिल पर साहेब राजी, ऐसा नम्र चित्त, निर्माण चित्त, कोई अहंकार नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रशंसा की भूख नहीं, वो आत्माएं बाबा को प्रिय लगती। ये कवच है, सदा अपने को सेवाधारी, मैं सेवाधारी हूं। बाबा कहता था, ब्रह्मा बाबा लिखते थे, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। इतना निरहंकारी, सदा अपने आप को, बच्चे मैं तो सेवाधारी हूं, मैं तो निमित्त हूं, मैं तो कुछ नहीं करता हूं, ये तो शिव बाबा आपको पढ़ा रहा है, शिव बाबा कर रहा है। अरे बिना किए हुए नर नारायण बन गया क्या? बिना किए बना क्या? ब्रह्मा बाबा ने कुछ नहीं किया, लेकिन सब कुछ करके अपने आप को इतना छिपा लिया, इतना छिपा लिया जो कहता बच्चे मैं कुछ नहीं करता हूं। तो हम तो बाबा के चरित्रों को देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपने त्याग से, तपस्या से, बलिदान से, समर्पण से और नम्रता का अवतार बन करके रहे। कोई कुछ भी बोला, कितनी गालियां खाई, कितना सहन किया, बच्चों से भी, समाज से भी, सरकार से भी, किसको पता था कि ब्रह्मा बाबा अपने को भगवान नहीं कहलाता है? वो तो समझते थे यही अपने को भगवान कहला रहा। और ड्रामा भी ऐसा बनाया शिव बाबा तो गुप्त, ब्रह्मा बाबा किसी को दृष्टि देता था उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता। अब ब्रह्मा बाबा कहता मैं कुछ नहीं करता हूं, कराने वाला बाबा गुप्त रीति से करा रहा है, लेकिन लोग तो सामने उसी को देखते। ये कोई जादू सीख के आ गया है, कितनी गाली खाई, कितना सहन किया, लेकिन सब कुछ करते हुए इतना नम्र चित, इतना निर्माण चित। तो अपने बच्चों को भी यही ट्रेनिंग देता है, बच्चे कितनी भी विशेषताएं हों, कितने भी अच्छे काम बाबा आपसे करा ले, कितने भी पुण्य कर्म यज्ञ में कर लो, आपका भाग्य बनता है, बन जाएगा, उसमें तो कोई रोक है ही नहीं, लेकिन कभी भी वर्णन चिंतन करके अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना, बहुत नम्रता का अवतार बन जाना, ये कवच है। बाबा ने हम सबको ऐसा सुंदर कवच दिया है, आसन कितना ऊंचा दिया, हम सब सुख के देवता हैं, सुख देने के लिए हैं। एक साक्षीपन का आसन है और एक सुखदेव का आसन है। इस आसन पर रहो, नीचे न आओ। हमको बाबा ने केवल सुख देने के लिए निमित्त बनाया है। हर एक डिपार्टमेंट इंचार्ज, जो डिपार्टमेंट के निमित्त हैं, जो सेवाएं बाबा ने आपको सौंपी है, कभी भी सेवा करते हुए ये ना आ जाए कि ये मेरी डिपार्टमेंट है, मैं जैसे चलाना चाहूं वैसे चलाऊं। एक बार गुलजार दादी बड़ी हंसी की बात कहती थी कि यहाँ जो टेबल साफ करते हैं ना, वो भी समझते मैं इंचार्ज हूँ। हंसते हंसते कहा था कि टेबल साफ करने वाला भी समझता मैं इंचार्ज हूँ, मेरे बिना पूछे कोई टेबल को हाथ नहीं लगा सकता, कोई हिला नहीं सकता। कितना अहंकार आ जाता है। हम निरहंकारी आत्माएं बाबा की चीजों को, बाबा के यज्ञ को, बाबा के हर चीज को संभालने के निमित्त हैं। कभी भी ये मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, ये मालिक बनाया माना नम्रता खत्म हो गई। बनाया मालिक बाबा ने इसलिए है कि ठीक तरह से इसको संभाला जाए। मालिक हैं लेकिन बालक भी हैं। उसकी चीज को मैं संभालने के लिए बाबा ने मुझे रखा है, नुकसान ना हो, लेकिन वो सुख देने के लिए है। दाता दे रहा है, बाबा हमको इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, और हम कंजूसी करें, हम उनको देने में आनाकानी करें, हम उनको दुत्कार दें, कई तो देते भी नहीं है और फिर दुत्कार भी देते हैं। दुत्कार दे समझते हैं, ऐसा बोल देते हैं जो बेचारे का दिल खराब हो जाए, दोबारा आए भी नहीं। तो ऐसा कोई भी कर्म न हो जो लोगों की बद्दुआएं मिले। लोग कहें इसको कितना अहंकार आ गया, थोड़ा सेवा करता है, थोड़ी कोई पोस्ट मिल गई, थोड़ी डिपार्टमेंट अच्छी मिल गई, इसको तो इतना अहंकार आ गया। ہم سب بابا کے بچے کتنے بھی اچھے سے اچھے کام بابا کرا لے، بڑے سے بڑی سیوائیں کرا لے، کرائے گا تو بچوں سے ہی، خود تو گپت ہے، لیکن کر کے اتنا سمرپت کر دیں بابا آپ نے کرا لیا، مجھے کہاں آتا تھا، میں کس یوگے تھا، آپ نے میری وشیشتا کو یوز کر لیا۔ تو ایسے نرہنکاری بن کر کے، نمرچت بن کر کے، سمان ضروری ہے، نمرتا ایسا نہ ہو بھولا روپ لے لے، بھولا پن لے لے، سمان ضروری ہے، سمان میں رہنا ہے، لیکن سمان میں رہتے بھی نرمان، سمان کبھی کبھی ابھیمان کا روپ بھی لے لیتا، سو بچار کرنا اس پر، کئی سمان میں رہتے رہتے وہ اہنکار آ جاتا ہے، میں یہ ہوں، لیکن بابا کے ٹائٹلز کو ہم نے اپنے میں ماسٹری کی ہے، جو بابا کے ٹائٹلز ہیں اس میں ماسٹری ہے، اس میں ہمارا سمان ہے، اگر وہ پیار کا ساگر ہے تو ہم بابا کے بچے ماسٹر ہیں، وہ سکھ کا ساگر ہے تو ہم ماسٹر ہیں، اس میں اس سمان میں ہم کو ماسٹری لینی ہے، ابھیمان والے میں نہیں۔ اس لیے جتنے نرہنکاری، جتنے نمرچیت، جتنے حاجی، جتنے جھکے ہوئے، جتنا نمن کرنا سیکھ لیتے، بابا کہتا سدا آپ کا نمسکار ہوگا، لوگ آپ کو پورے کلپ نمن کریں گے، بھکتی میں بھی دل سے رسپیکٹ دیں گے، دل کی بھاونائیں اپنے بڑوں کے پرتی ہوں گی، اور دواپر کلیوگ میں تو نمن کریں گے، دنڈوت کریں گے، آپ کی مورتی کے آگے پورا ہی لیٹ جائیں گے اگر اس سمے آپ نمرچت رہے ہو تو۔ تو ہم سب اتنے نمرچت، نرمان چت، نرہنکاری بن کر کے بابا کے اس کاریہ کو سمپن کریں، بابا کرا لے، بابا یہ تن تیرا ہے، یہ من تیرا ہے، یہ دھن تیرا ہے، آپ یوز کرو اس کو، یوز کر لو جتنا یوز کرنا ہے، تو بابا یوز کرے ایسا اپنے آپ کو نرمان چت بناؤ۔ بابا نے آج کی مرلی کا یہ وشیش ہوم ورک ہم سب کو دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ضرور مرلی سن کر کے آپ سب کو یہ پریرنا آئی ہوگی کہ مجھے کچھ تو کرنا ہے، میں کروں گا، سب کریں گے، سب کریں گے، سب پلان بنے گا تو کروں گا، بابا یہ نہیں چاہتا ہے۔ تو ہم سب اپنے آپ کو بہت سوکشم میں جا کر کے، ایسے چانس ملتے ہیں مدھوبن میں رہنے کے، یوگ کرنے کے، کانت میں بیٹھنے کے، تو اپنے آپ کو سوکھ میں جا کر کے چیک کرنا کہ مجھے کہاں کہاں خود کو بدلنا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی روپ میں، کسی نہ کسی روپ میں کوئی نہ پرانا سنسکار چھپا ہوا ہے، اس پرانے سنسکار کو مجھے سنسکار کر کے چھوڑنا ہے، وہ چھپا ہوا رہے گا تو انتکال میں بابا کہتا چھوٹی سی بھی کوئی کمی اگر رہی ہوئی ہوگی تو وہی سامنے بڑا روپ بن کر کے آئے گی، وہی پیپر بن کے آئے گی اور فیل کر دے گی۔ اس لیے جب چانس ہے، سمے ملا ہے، تو ہم اس کو بہت گہرائی سے چیک کر کے، ایکانت واس کر کے، تپسیا کر کے، ایسی بھٹیاں کرو۔ میں تو دیکھ رہا تھا آج پانڈو بھون میں 250 لوگوں کی بھٹی چل رہی ہے، وہاں بھی 2 کلاس کرایا، پیس پارک میں 35 بھائی بہنیں بھٹی کر رہے ہیں، سب طرف بہت سندر واتاورن ہے، ایسے لگتا ہے بیٹھ جاؤ یوگ میں، اٹھنے کی دل ہی نہیں کرتی، تو ایسا سندر چاروں طرف سے واتاورن ہے۔ آپ سبھی بھی شانتی ون میں تو شیویر شروع ہونے والے ہیں کل پرسوں سے، بھلے شیویر چلیں گے لیکن جو یہاں رہ رہے ہیں، لکش رکھ کر کے صبح شام کم سے کم 4 گھنٹے کی تپسیا ضرور کرو، اور ایسی تپسیا کرو جو چاروں طرف میں وایو منڈل بہت شکتیشالی بن جائے، جس آتما کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہاں پر پہنچے، ملے۔ تو ہم سب مل کر کے ایسی تپسیا کریں، ایسا یوگ کریں، اور وشیش کر کے انترمکھی سدا سکھی، کوئی بھی وائی مکتا کا واتاورن نہ بنے، کبھی بھی آپس میں مل کر کے پر چرچا نہیں کرنا، ایک سلوگن ہمیشہ لکھ کر کے اپنے سامنے رکھنا ہے، سوچنتن انتی کی سیڑھی ہے، पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर मुझे आत्मा को अपनी प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, तो बाबा के घर में रह करके कभी भी मुझे किसी का चिंतन नहीं करना। दूसरे का चिंतन करना ही पर चिंतन कहलाता है। ये ऐसे करता, वो ऐसे करता, यहाँ ऐसे हुआ, वहाँ ऐसे हुआ, बाबा कहता उसको सब को छोड़ो, स्व का चिंतन करो, मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया है, मैं बाबा के समान बनने के लिए क्या लक्ष्य रखा है, किस तरह से मेरा पुरुषार्थ है। अमृत वेले से रात तक के सब संकल्प, इस संकल्प से मैं अमृत वेला करूंगा, इस संकल्प से मैं मुरली सुनूंगा। संकल्प तो बाबा ने दिए ही हैं कि अमृत वेले उठो बाबा, मैं आपका बच्चा हूं। पांच संकल्प सुना देता हूं, पांचों रूप के। अमृत वेले आंख खुलती है, बाबा मैं आपका बच्चा, आपके पास आपकी गोदी का पुत्र हूं, मैं अवतरित हुआ हूं, अभी अभी आया हूं पार्ट बजाने, आपने मुझे भेजा है। अमृत वेले ऐसा संकल्प लेकर के बाबा से मिलन मनाओ, शक्ति लो, वरदान लो, ऐसे दुआओं का हाथ अनुभव करो। ठीक है, मुरली सुनते समय मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, बाबा स्वयं टीचर बन करके आप इतनी दूर से मुझे पढ़ाने के लिए आए हो, कितने वरदानी महावाग की हम बच्चों को सुना रहे हो, मैं आपका गॉडली स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट लाइफ में कोई चिंता नहीं, कोई व्यर्थ चिंतन नहीं, कोई जवाबदारी का बोझ नहीं, मैं आपका गॉडली स्टूडेंट, बहुत ध्यान से पढ़ूं, मनन करूं, चिंतन करूं, स्वरूप में ले आऊं, जो आप कह रहे हो मैं करूं, दूसरा कर रहा है या नहीं। कई नोट्स लेते हैं ना, फलाने को भेज दो, बाबा ने फलाने के लिए बड़ी अच्छी मुरली चलाई, ये बात जो कही ना उसके लिए बहुत अच्छी थी, मेरे लिए नहीं थी क्या। तो मैं गॉडली स्टूडेंट, भगवान का स्टूडेंट, केवल भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आया है, ये भावना लेकर के मुरली सुनो। फिर कर्म क्षेत्र पर आते हुए मैं कर्म योगी आत्मा हूं, यात्री भी हूं, यात्रा भी चालू है बाबा के साथ कंबाइंड होकर के, करावनहार इन कर्म इंद्रियों से करा रहा है, मैं आत्मा करावनहार कर्म इंद्रियों से करा रही हूं और बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। कर्म योगी स्थिति का संकल्प ले लो, करावनहार की स्मृति है, बाबा के साथ बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, एक ही संकल्प है, बाबा आप खिलाने वाले हो, पहले आप स्वीकार करो, भले कहता मैं खाता नहीं हूं लेकिन ऑफर तो करो। बहुत प्यार से बाबा को भोग खिला करके, बाबा को साथ लेकर के योगी जीवन है, बाबा को खिलाया और खाया अनासक्त वृत्ति से। ये भी चीज नुकसान कर देगी, ये ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, खाना आते ही 10 नेगेटिव संकल्प कईयों को आ जाते, नहीं बीमारी होने आने वाली होती, हम संकल्प से उसका आह्वान कर लेते, आने वाला नहीं है वो, लेकिन ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, ये खाएंगे तो ये हो जाएगा। बाबा को भोग लगाया है, बाबा खिला रहा है अनासक्त होकर के, घोड़े को घास तो देनी है, थोड़ा सा खा लिया बस, नहीं खाना है तो छोड़ दो, लेकिन नेगेटिव संकल्प करके खाओगे तो क्या होगा। तो भोजन करते बाबा साथी है, खिलाने वाला साथ है, उसकी स्मृति बनी रहे। सैर करते बाबा आपके हाथ में हाथ है, आप मेरे साथ साथ चल रहे हो, मन और तन स्वस्थ हो रहा है, बाबा को साथी बना करके उसके साथ साथ चलो, बाबा के हाथ में हाथ दे करके चलो। नमाज शाम के समय मैं बाबा आपके वतन का सैर करने के लिए फरिश्तों की दुनिया में आया हूँ, और फरिश्ता बन करके सारे विश्व का भ्रमण मुझे करना है, आपके साथ विश्व की सेवा करनी है, ऐसा योग के समय का संकल्प ले लो। रात्रि के समय बहुत मीठी याद में बाबा जो कुछ बीता, जो हुआ, ये आप सब आपके हवाले है, राजकुमारी बन जाओ, राजकुमार बन जाओ, बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में समर्पित करके कर्मों को, लाइट की ड्रेस पहन करके बाबा की गोदी में सो जाओ। तो आज जो बाबा ने होमवर्क दिया है, उस होमवर्क अनुसार अपने सब स्वरूपों को स्मृति में रख करके बाबा के साथ मिलन मनाते हम सब बाबा को बाबा की ऐसी सुंदर पालना का रिटर्न करें। ठीक है, तो आज की मुरली किसने दो बार रिपीट की है? किया है सही कि सिर्फ सुना है? सिर्फ सुना है वो हाथ उठाओ, है ना। बहुत सारे हैं, बहुत सारे भाई बहने सिर्फ सुना है, लेकिन लाइब्रेरी में जाना, सब नहीं मांगने आ जाना, मुरली दे दो। लाइब्रेरी में मुरली रहती है, आजकल तो सबके पास मोबाइल में भी होती है। आप मुरली को कई बार पढ़ के देखो, बहुत गहरी है, बहुत अच्छी अच्छी पूरे जीवन की बाबा ने शिक्षाएं दे दी है। तो हम सब बहुत प्यार से बाबा की मुरली का अध्ययन करें और उसका स्वरूप बन के दिखाएं। ओम शांति।
उपमा तुम्हारी बाबा हम तो